आगे सबक देखिए भाई, वफी शेरा इबीता मन मिसली यम बी मिसली ही वफी गैरी ही बिल कीमा वफी आकारिन बी आकारिन ओखिजा कुल्लुन बी कीमतिल आखर وفي ثمن مؤجل بحال أو طلب في الحال وأخذ بعد الأجل هذا عندنا وأما عند زفر والشافعي رحمهما الله تعالى في قوله القديم فله أن يأخذه في الحال بالثمن المؤجل ولو سكت عنه بطلت. شفا کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں بھئی, आगे मसाला जिक्र कर रहे हैं. वफी शिरा इबितमनी मिसलीन बिमिसली ही वफी गैरी ही बिलकीमती. भाई आप जानते हैं कि चीजें जो हैं वो दो किस्म पर हैं, कुछ मिसलियात हैं और कुछ जवातुल कीम हैं, कीमत वाली हैं, कीमत वाली. आप देखते हैं मुख्तलिफ चीजों को बेचने के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं. कुछ चीजों को वजन करके तोल कर बेचा जाता है. आप बाजार जाते हैं, चीनी खरीदते हैं, वो आपको तोल कर दी जाती है. आप गुड़ खरीदते हैं, आपको तोल कर दिया जाता है. आप लोहा खरीदते हैं, आपको तोल कर दिया जाता है. आप आटा खरीदते हैं, आपको तोल कर दिया जाता है. तो कुछ चीजें क्या हैं, वजनी हैं, उनको वजन करके बेचा जाता है. इसी तरह कुछ चीजें जो हैं उनको खास बर्तन में माप कर बेचा जाता है. मसलन आप दूध खरीदने जाते हैं तो वो आपको एक खास बर्तन में माप कर देता है कि एक लीटर इतने रुपए का, दो लीटर इतने रुपए के. इसी तरह ये जो गंदुम है, गंदुम जौ वगैरह, और ये चीजें भी कदीम जमाने में एक बर्तन के अंदर माप कर बेची जाती थी और उसको कफीस कहते थे. कफीस वजन नहीं किया जाता था. आजकल तो गंदुम का वजन किया जाता है, लेकिन उस कदीम जमाने में इनको बर्तन में माप कर बेचा जाता था. आज भी पाकिस्तान के बाज देहात में यही तरीका राइज है. गंदुम को माप कर वो बेचते हैं. एक बड़ा सा बर्तन होता है और वो पूरा बर्तन भर कर, मसलन 100 रुपए का है तो दो बर्तन आप लेते हैं तो 200 के हो जाएंगे, तीन लेंगे तो 300 के हो जाएंगे. तो इस तरह उस गंदुम का हिसाब किया जाता है और अरबी में उसको कफीज कहते हैं. वो जो बर्तन है उसको क्या कहते हैं, कफीज. तो देखो ये है मापी जाने वाली चीजें. दोबारा सुने, कुछ चीजों को वजन करके बेचा जाता है, कुछ चीजों को माप कर बेचा जाता है बर्तन वगैरह में, और इनको कहते हैं मकीली, कैल किया जाता है. कैल का माना है मापना, मापना. तो बर्तन में इनको मापा जाता है. और कुछ चीजों को गिनकर फरोख्त किया जाता है. मसलन आप अंडे खरीदने जाते हैं तो गिनकर खरीदते हैं कि एक दर्जन चाहिए या दो दर्जन चाहिए. इसी तरह केले हैं, माल्टे हैं और कुछ चीजें जिनको गिनकर बेचा जाता है. बाज जगहों पर इनको तोल कर बेचते हैं और बाज जगहों पर गिन कर बेचते हैं. तो इनको मादूदात कहते हैं, मादूदात मुतकारिबा. मादूदात जिनको शुमार किया जाता है, गिना जाता है, और मुतकारिबा जो एक दूसरे के करीब करीब हैं, एक दूसरे जैसे हैं. भाई अब अंडे हैं, उनको गिन कर बेचा जाता है. अब हर अंडा बिल्कुल दूसरे अंडे जैसा तो नहीं, थोड़ा बहुत फर्क तो होता है, लेकिन उस फर्क को शुमार नहीं किया जाता. बात समझ में आ रही है? तो इनको क्या कहते हैं, मादूदाते मुतकारिबा. और कुछ चीजों की पैमाइश करके उनको बेचा जाता है. पैमाइश करके, मसलन आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से आप एक गज या दो गज या तीन गज पैमाइश करके खरीदते हैं. इसी तरह जमीन जो है उसको भी उसकी पैमाइश करके बेचा जाता है कि एक कनाल है, दो कनाल है, या आधा कनाल है, या एक मरला है. वो बाकायदा पैमाइश होती है उसकी. तो अब याद रखिए, इनमें से कुछ चीजें मिसलियात हैं और कुछ जवातुल कियम हैं. इनमें से जो जिन चीजों को वजन करके बेचा जाता है और इसी तरह जिन चीजों को माप कर बेचा जाता है बर्तन के जरिए, और इसी तरह ये जिन चीजों को गिन कर बेचा जाता है, ये मिसलियात में दाखिल हैं. मालूम हुआ मौजूनात जिनको वजन किया जाता है, मकीलात जिनको मापा जाता है, और इसी तरह ये जो मादूदात मुतकारिबा हैं जिनको गिनकर बेचा जाता है, ये मिसलियात के अंदर दाखिल हैं। अब मसला ये जिक्र कर रहे हैं कि शुफा की तारीफ में आपने पढ़ा था कि वो जमीन का मालिक बनना है मुश्तरी पर, यानी मुश्तरी के मुकाबले में, और क्या अदा करेंगे आप उसकी कीमत का, उसके समन का मिसल अदा करेंगे, मिसल अदा करेंगे। तो अब आपको आगे बतलाएंगे कि अगर किसी ने जमीन को या जायदाद को मिसलियात के बदले फरोख्त किया है तो शफी भी वही मिसली चीज अदा करके उस जमीन को ले लेगा, और अगर उसने जमीन को जवातुल कियम के बदले फरोख्त किया है तो इस सूरत में शफी कीमत देकर उसका मालिक बन जाएगा। मिसलियात में क्या देगा? मिसल। और जवातुल कियम में कीमत। जवातुल कियम में तो आती ही कीमत है, मसलन गाय बैल बकरियां वगैरह हैं, इनकी कीमत लगाई जाती है, इनको फरोख्त किया जाता है। गिन कर नहीं कोई फरोख्त करता, क्योंकि हर गाय दूसरी गाय से अलग है, हर बकरी दूसरी बकरी से अलग है, हर एक की कीमत अलहदा अलहदा है, तो इनको जवातुल कियम कहते हैं। जवातुल कियम कीमत वाली हैं। तो अब अगर सूरत क्या जिक्र हो रही है, किसी शख्स ने जमीन को खरीदा किसके बदले? मौजूनात के बदले। मसलन उसने 1,000 मन लोहा देकर एक घर खरीदा, तो शफिया को भी बदले में क्या देना पड़ेगा? 1,000 मन लोहा, क्योंकि लोहा मौजूनात में से है, वजन करके बेचा जाता है। आज ये मसला आपको बतला रहे हैं कि समन क्या अदा करने पड़ेंगे? मिसले, उसी मुश्तरी के मिसले समन अदा करना पड़ेंगे भाई, तो यहां भी वही अदा करेगा। इसी तरह अगर किसी ने वो घर खरीदा है 1,000 कफीज गंदुम देकर, तो शफीअ भी उसी जैसी 1,000 कफीस गंदुम देकर वो मकान लेगा भाई। मिसलियात में क्या देगा? उस समन का मिसल देगा भाई, मिसल देगा। और बाकी सूरतों में कीमत देगा, क्या देगा? कीमत देगा भाई, कीमत देगा। मसलन किसी शख्स ने एक मकान खरीदा 10 ऊंट देकर, अब ऊंट किस में से है? मिसलियात में से या जवातुल कियम में से? जवातुल कियम में से। तो लिहाजा अब ऊंटों की कीमत लगाई जाएगी और शफिया वो कीमत देकर वो घर ले लेगा, क्योंकि शफिया तो वैसे ऊंट नहीं कहीं से ला सकता भाई, बहुत मुश्किल है। एक जानवर दूसरे जानवर से हमेशा मुख्तलिफ होता है, और अगर जाहिरी तौर पर बड़ी मुश्किल से तलाश भी कर लिया जाए तो बातिनी सिफात जानवर की अलग अलग होती हैं, तो लिहाजा मालूम हुआ इनका मिसल मिलना मुमकिन नहीं, ये जवातुल कियम में से है, तो फिर यहां उनकी कीमत देकर वो जमीन लेगा। तो मिसलियात में क्या देगा? शफिया मिसल देगा, और जवातुल कियम में क्या देगा? कीमत देगा। तो कहते हैं वफी शिरा इबिस्ता मनी मिसलियन, और समन मिसली के बदले खरीदने की सूरत में, तर्जमे पे नजर है, वफी शिराई और खरीदने की सूरत में भी समानी मिसली इन, किसके बदले? समने मिसली के बदले खरीदने की सूरत में भी मिसली ही शफी उसको ले लेगा, उसके मिसल के बदले, उसी के मिसल के बदले। बाय ने खरीदी थी समने मिसली के बदले, तो शफी भी उसी के मिसल के बदले उसको ले लेगा। वफी गैर ही बिल कीमती ऐफी गैर मिसलीन, और गैर मिसली के अंदर किसके बदले ले लेगा? कीमत के बदले। तो ये गैर ही की हाजमीर समन मिसली को राजे करें, वफी गैर समन मिसलीन, और गैर समन मिसली की सूरत में बिल कीमती किसके बदले ले लेगा? कीमत के बदले ले लेगा। वफी आकारिन बे आकारिन आखाजा कुल्लुन बे कीमतिल आखर। भाई पहले एक बात समझ ले, एक है समन और एक है मबीआ, एक है समन और एक है मबीआ, तीन चीजें हमेशा समन बनती हैं, सोना चांदी और करेंसी जो आजकल आप इस्तेमाल करते हैं, जो पैसे हैं, पैसे, सोना चांदी और करेंसी।
करेंसी
तो जब भी बैग के अंदर एक तरफ सोना चांदी या करेंसी हो तो आपने हमेशा उसको समन बनाना है और दूसरी चीज को मबीहा बनाना है। चाहे बोलने में एक उन्होंने बराक्स किया हो, मसलन एक तोला सोना है, एक आदमी दूसरे से कहता है मैं तुम्हें ये एक तोला सोना फरोख्त करता हूं 10 बोरी गंदम के बदले। कितने के बदले? 10 बोरी गंदम के बदले मैं तुम्हें ये एक तोला सोना फरोख्त करता हूं। अब बजाहिर यूं लग रहा है ये सोना है मबीहा और 10 बोरी गंदम क्या है? समन है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक तरफ क्या है? सोना है और दूसरी तरफ आम चीज है। तो सोना चांदी या करेंसी को हमेशा क्या बनाते हैं? समन। तो इस बैग में भी ये सोना जो है इसको समन करार दिया जाएगा और वो जो 10 बोरी गंदम है उसको मबीहा करार दिया जाएगा। और अगर दोनों तरफ सोना चांदी और करेंसी में से कोई एक चीज हो फिर तो ये बैए सर्फ है, फिर जिसको मर्जी आप समन बनाएं और जिसको मर्जी आप क्या करें? मबिया बनाएं। और अगर दोनों तरफ सामान है, मसलन आपने 10 बोरी गंदम दी और 10 बोरी चावल ले ली उसके बदले में, तो अब दोनों तरफ सामान है, किसी एक तरफ भी सोना चांदी या करेंसी नहीं, तो अब जिसको मर्जी चाहें समन करार दे लें और जिसको मर्जी चाहें मबिया करार दे दें। दोनों समन भी हैं दोनों मबिया भी हैं। तो अब सूरत मसला यह कि एक शख्स ने एक जमीन खरीदी और बदले में उसको दूसरी जमीन दे दी। आपने इस्लामाबाद में एक मकान खरीदा और उस शख्स को बदले में लाहौर का अपना एक मकान दे दिया। तो देखो जमीन के बदले क्या आ गई? जमीन। या घर के बदले क्या आ गया? घर आ गया, घर आ गया। अब याद रखो इसमें से किसको मबीहा करार दें और किसको समन करार दें, क्योंकि किसी तरह भी सोना चांदी या करेंसी नहीं है। तो याद रखो दोनों मिन वजह मबीआ हैं बाज एतबारात से और दोनों ही बाज एतबारात से समन है। आप चाहें तो इस्लामाबाद वाले को क्या करार दे दें? मबीआ। और लाहौर वाला मकान जो बदले में दिया उसको क्या करार दें? समन। और इसका बरअक्स भी है, देखें तो लाहौर वाला मकान क्या है? मबीआ। और इस्लामाबाद वाला मकान क्या है? समन है। तो दोनों समन भी हैं दोनों मबीआ भी हैं। दोनों बियायों का आसान लफ्जों में दोनों मबीआ हैं, दोनों को बेचा गया है। जब दोनों को बेचा गया है तो दोनों मकानों के जो पड़ोसी हैं वो इन पर शुफा कर सकते हैं। इस्लामाबाद वाले मकान के जो पड़ोसी हैं वो क्या कर सकते हैं? शुफा कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद वाला मकान क्या है? मबीआ है, इसको बेचा गया है, इसकी बया हुई है। और लाहौर वाले मकान के पड़ोसी भी शुफा कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो समन है। नहीं भाई, ठीक है इस वक्त आपने समन बनाया लेकिन इसमें मबिया बनने की सलाहियत है या नहीं? तो बाद एतबार से ये मबिया भी है, गोया इसकी बै हुई है। जब इसकी बै हुई है तो इसके पड़ोसी भी इस पर क्या कर सकते हैं? शुफा कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, दोनों जगहों के पड़ोसी उन मकानों पर शुफा कर सकते हैं। अब जो इस्लामाबाद के पड़ोसी हैं, इस्लामाबाद वाले मकान के पड़ोसी, उन्होंने इस्लामाबाद वाले मकान पर शुफा कर दिया। अब वो इस मकान को लेते हैं, काजी उनके लिए फैसला करता है, तो उनको बदले में क्या देना पड़ेगा? तो कहते हैं देखिए ये इस्लामाबाद वाले मकान के बदले में इसने क्या दिया था? लाहौर वाला घर। तो लाहौर वाला घर इसकी समन है। क्या है? इसकी समन है, लेकिन वो तो जमीन है। कहते हैं उसकी कीमत लगा लो, उस घर की कीमत लगाओ, वो जो पैसे बने वो इस्लामाबाद वाले घर की कीमत है। इस्लामाबाद वाले घर की अपनी कीमत नहीं लगानी, क्योंकि इसके बदले में क्या दिया था? लाहौर वाला घर दिया था, तो वो इसकी समन है भाई। बात समझ में आ रही है? और समन ही देने होते हैं किसने? शफिया ने। तो लिहाजा इस्लामाबाद वाले घर के जो शुफा हैं, जो शफिया हैं, वो इस्लामाबाद वाला घर ले लेंगे, लेकिन बदले में क्या देना पड़ेगा उनको? कीमत किस घर की? लाहौर वाले घर की कीमत देना पड़ेगी बदले में। और जिन्होंने लाहौर वाले घर पर शुफा किया है
इस्लामाबाद वाले घर की।
वो इस्लामाबाद के घर वाली कीमत देकर ये लाहौर वाला घर ले लेंगे, क्योंकि इस लाहौर वाले घर का बदल क्या है, इसका समन क्या है, इस्लामाबाद वाला घर। और इस्लामाबाद वाला घर जवातुल कियम में से है या वो मिसलियात में से है? जवातुल कियम में से। और जवातुल कियम में क्या दी जाती है, उसकी कीमत, तो लिहाजा उसकी कीमत दे देंगे। सूरत समझ में आ गई? तो हर घर दूसरे का समन बन रहा है, और वो जायदाद है, जमीन है, और जमीन और जायदाद किस में से होती है, वो जवातुल कियम में से होती है, लिहाजा वो दूसरे की कीमत देकर एक को ले लिया जाएगा। सूरत अच्छी तरह सबको समझ में आ गई? तो कहते हैं वफी आकारिन बे आकारिन, और आकार के बदले आकार, ये बाइवस पर आ रही है। इसका तर्जमा मैं बदले में कर रहा हूं। बे में भी क्या करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के बदले में बेचा जाता है, तो उस पर समन पर, उमन समन पर बा दाखिल करते हैं। किस पर?
समन।
मसलन मैं कहता हूं इश्तराई तु हादल कलमा बी अल्फी रुबियतिन, मैंने ये कलम 1,000 रुपए के बदले खरीदा। इबारत पे नजर है, इश्तराई तु हाजल कलमा बी अल्फी, बा ला रहा हूं मैं, समन के ऊपर बा दाखिल करते हैं, बी अल्फी रुबियतिन, कितने के बदले में, 1,000 रुपए के बदले में खरीदा है। तो यहां पर भी देख लें वफी आकारिन बी आकारिन, और जायदाद के बदले जायदाद की सूरत में, गैर मनकुली जायदाद के बदले, तो ये बदला मैं किसका तर्जमा कर रहा हूं, बा का, ये इवज है। और ये बा किस पर दाखिल होती है, समन पर। लेकिन मैंने बताया कि अगर सोना चांदी या करंसी हो तो उन्हीं को समन बनाना पड़ेगा, चाहे बा उनके ऊपर दाखिल ना करें, बा दूसरे चीज पर दाखिल कर दें। और जब दोनों तरफ माल है, सोना चांदी और करेंसी के अलावा और चीजें हैं, फिर बा को जिस पर भी दाखिल कर दें, दोनों चीजें मबिया भी हैं और दोनों चीजें समन भी हैं। तो कहते हैं वफी आकारिन भी आकारिन, और जायदाद के बदले जायदाद की सूरत में आखाजा कुल्लुन, वो शफी ले लेगा कुल्लुन। याद रखिए जो कुल्लू है ना, ये मुजाफिले चाहता है। क्या चाहता है? मुजाफिल है। कुल, कुल का माना सारा, सारा भाई किस चीज का सारा चाहिए या नहीं चाहिए, आगे लफ्ज सारी किताब, सारा कलम, सारे पैसे, सारे फल, कोई लफ्ज तो आगे चाहिए भाई, किस चीज का सारा। तो इसके लिए मुजाफिले चाहिए। क्या चाहिए? मुजाफिले चाहिए। और कभी कभार वो मुजाफिले हजफ कर देते हैं और इसके ऊपर तनवीन ले आते हैं, जैसे यहां पर है कुल्लुन, इस पर क्या आ रही है, तनवीन। आप समझ जाएं इसका मुजाफिले महजूफ है। अय कुल्लु वाहिदिन, कुल्लु वाहिद, आखाजा कुल्लु वाहिदिन, वो ले लेगा हर एक को, यानी लाहौर वाली जमीन को भी ले सकता है वो जो उसका पड़ोसी है, और जो इस्लामाबाद वाले पड़ोसी हैं वो इस्लामाबाद वाले को भी ले सकते हैं। तो आखाजा शफी ले लेगा कुल्लुन, हर एक को, शफी ले लेगा, यानी शफी लाहौर वाला भी हो सकता है और इस्लामाबाद वाला भी हो, जो भी शफी हुआ आखाजा वो ले लेगा कुल्लुन, आई कुल्लु वाहिद, कुल्ला वाहिदिन। हाँ उखीजा पढ़े भाई, कुल्लुन है ना, इसको नाई फाइल बनाना है, तो अगर आखाजा फाइल बनाए आखाजा वो ले लेगा, तो फिर कुल्लन तन मनसूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनसूब। लेकिन यहां पर मरफू है तो उखीजा पढ़ो और कुल्लुन को नायबुल फाइल बनाओ। उखीजा ले लिया जाएगा कुल्लुन ऐ कुल्लु वाहिदिन, हर जमीन को, लाहौर वाली को भी लिया जा सकता है अगर शफी उस पर शुफा करे, और इस्लामाबाद वाली पर कोई शुफा करे तो उसको भी लिया जा सकता है। लेकिन किस तरह लिया जाएगा, बिकीमतिल आखरी, दूसरी जमीन की कीमत के बदले। इस्लामाबाद वाली पर कोई शुफा करता है तो किसकी कीमत लगाई जाएगी, लाहौर वाली जो उसका समन है उसकी कीमत लगाई जाएगी। और अगर शफिया ने, शफी का घर लाहौर वाली जमीन के साथ है, वो लाहौर वाली जमीन पर शुफा करता है तो किसके बदले लेगा, इस्लामाबाद वाली जमीन की कीमत के बदले। मसला सबको अच्छी तरह समझ में आ गया, इबारत समझ में आ गई? तो कहते हैं वफी आकारिन बे आकारिन, और जायदाद के बदले जायदाद की सूरत में उखीजा कुल्लुन, हर एक को ले लिया जाएगा, यानी चाहे जो मबीआ जिसको बनाया है, चाहे जिसको समन बनाया है, उकुल्लुन उनमें से हर एक को ले लिया जाएगा, बिकीमतिल आखरी दूसरे की कीमत के बदले में। मसला अच्छी तरह समझ में आ गया, हल हो गया जी। वफी समनिम मुअज्जलिन बिहालिन औ तलब फिल हाल व अखद बाद अल अजल। सूरत मसला यह कि बाय और मुश्तरी के दरमियान जो बैह हुई थी, मुश्तरी ने बाय से कहा था कि मैं ये मकान आपसे खरीद रहा हूं, मैंने मकान आपसे खरीदा, लेकिन पैसे मैं आपको एक साल बाद दूंगा या 6 माह के बाद दूंगा। तो अब देखो ये समन जो है मुअज्जल है, अजल कहते हैं मुद्दत को, मुद्दत को समन मुअज्जल, जिसकी मुद्दत तय की गई है। एक तो फौरी पैसों की अदायगी है ना, उसको समन हाली कहते हैं। क्या कहते हैं? समन हाली, के फिलहाल फौरन जिनकी अदायगी हो रही है। लेकिन जो बाय और मुश्तरी के दरमियान यहां सूरत जिक्र कर रहे हैं कि बै हुई है समन मुअज्जल के बदले समन। अब शफी ने शुफा किया, शफी इसको लेना चाहता है, तो क्या शफी भी एक साल बाद पैसे अदा करेगा? क्या उसको भी उतनी ही मुद्दत दी जाएगी? कहते हैं नहीं भाई, शफिया को मुद्दत नहीं दी जाएगी। बाय वो मुद्दत मुश्तरी को देने पर तो राजी था, हर एक को वो मुद्दत देने पर राजी नहीं। तो लिहाजा अगर शफिया जमीन को लेना चाहता है तो उसे फौरी पैसे देना पड़ेंगे। अगर शफिया चाहता है कि नहीं मैं भी साल बाद पैसे अदा करूं, तो कहते हैं उसकी भी सूरत है। उसकी सूरत यह है कि आप शुफा फिलहाल तलब कर लें, शुफा फिलहाल तलब कर लें, काजी आपके हक में फैसला भी दे देता है, सारा मुकदमा हो गया, लेकिन आप जमीन ले ना, जमीन पर कब्जा ना करें जब तक वो मुद्दत पूरी नहीं हो जाती। जब मुद्दत पूरी हो गई, साल गुजर गया, अब आप जमीन लें और फौरी क्या कर दें, पैसे दे दें। तो अगर आप उस मुद्दत को लेना चाहते हैं तो तब तक जमीन को भी ना लें, जमीन उन्हीं के पास रहने दें। तो शुफा फिलहाल करेगा, हां जमीन उस मुद्दत के बाद पूरी होने पर लेगा और समन अदा करेगा। और अगर इसने शुफा में ही ताखीर कर दी कि मैं शुफा ही कब जाके करूंगा, साल बाद जाऊंगा, कहते हैं भाई फिर तो इसका हक शुफा बातिल हो जाएगा। मसाला समझ में आ गया? तो शुफा फिलहाल करेगा और जमीन को उस वक्त ले लेगा। तो कहते हैं वफी समन मुअज्जलिन, और समन मुअज्जल की सूरत में बिहालिन किसके बदले होगा? समन हाली के बदले होगा, ऐ बि समनिन हालिन। फिर सुने वफी समन मुअज्जलिन, और समन मुअज्जल की सूरत में बिहालिन ऐ बि समनिन हालिन किसके बदले लेगा? समने मुशफिया जो है वो समने हाली के बदले लेगा। ये बात वो उसी तरह इवज पर आ रही है, समने मुअज्जल की सूरत में बिहालिन ऐ बि समनिन हालिन, समने हाली के बदले होगा, यानी वो समने हाली देना पड़ेगा शफिया को। औ तलबा फिल हाली व अखज़ा बादल अजल, या वो मुतालबा करे शुफे का फिल हाल, अभी मुतालबा कर ले, काजी के पास चला जाए, वह आखादा बादल अजल, और ले कब? हां लेगा उसको बादल अजल ही, किसके बाद? मुद्दत पूरी होने के बाद। हादा इंदना, ये हमारे नजदीक है, यानी फुकहाए अहनाफ के नजदीक मसला इस तरह है, या तो वो समने हाली दे दे या जमीन भी उस मुद्दत के बाद पूरी होने पर ले और फिर समन दे। वह अम्मा इंदा जुफर व शाफिय रहिमहुमल्लाह ताला फी कौलिहिल कदीम, जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक उनके कदीम कौल में, फी कौलिहिल कदीमी, इसका ताल्लुक सिर्फ इमाम शाफी से है भाई, कौलिही की हाजमीर इमाम शाफी को राजे है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का पुराना कौल जो है, मालूम हुआ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के सिलसिले में दो कौल होंगे भाई, एक नया कौल होगा और एक पुराना कौल होगा, तो ये पुराने कौल का जिक्र कर रहे हैं। तो कहते हैं अम्मा इंदा जुफर व शाफी रहिमहुमल्लाह ताला फी कौलिहिल कदीमी, और इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के पुराने कौल में, फलहू उस शफी के लिए यह जायज है, अय्याखुजहू फिलहाली बिसमनिल मुअज्जली, एक शफी के लिए जायज है کہ وہ اس زمین کو لے لے فی الحال ہی بالثمن المؤجل, کس کے بدلے؟ ثمن مؤجل کے بدلے. معلوم ہوا امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بائے نے مشتری کو جو مدت دی ہے وہ مدت کس کے لیے آ جائے گی؟ شفیع کے لیے بھی آ جائے گی, اس کو بھی اختیار ہوگا, وہ بھی مدت پر جب پوری ہوگی تب پیسے دے گا. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قدیم قول ہے اس میں بھی انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے. تو یہ معنی فلہ ان یأخذہ فی الحال بالثمن المؤجل, شفیع کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین کو لے لے فی الحال ہی بالثمن المؤجل, ثمن مؤجل کے بدلے. ولو سکت عنہ بطلت, اور اگر وہ خاموش رہا اس سے, اس طلب سے, بطلت, تو اس کا شفع باطل ہو جائے گا. ابھی میں نے بتایا متن کو متن سے جوڑیں, او طلب فی الحال, طلب کیا کرے؟ فی الحال. وَأَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ, اور لے گا اس مدت کے بعد, یعنی سال بعد. مطالبہ فی الحال کرے, خصومت قاضی کے پاس فی الحال کر لے, قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا, اب یہ زمین کو لے نہ بلکہ جب سال پورا ہو, سال کی مدت پوری ہو, وہ جو مدت طے ہوئی تھی بائے اور مشتری میں, تو اس وقت پھر زمین لے لے اور سامان دے دے. یہ معنی ہے وَأَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ, اور لے گا کب؟ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد. تو طلب فی الحال کرنی ہے. ولو سکت عنہ, اور اگر وہ طلب سے خاموش رہا کہ طلب بھی میں کب کروں گا؟ مدت پوری ہونے کے بعد, سال کے بعد کروں گا, تو بطلت, تو اس کا حق شفا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اے ان سکت عن الطلب, اگر وہ خاموش رہا طلب سے, وصبر, اور اس نے صبر کیا, حتی یطلب عند الاجل, یہاں تک کہ وہ طلب کرے, کب؟ عند ال مدت کے پورا ہونے کے وقت اس نے طلب کی, تو بطلت شفعتہ, تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. وفی شراء ذمی بخمر او خنزیر والشفیع ذمی بمثل الخمر وقیمة الخنزیر والشفیع المسلم بقیمة کل. مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا کہ اگر سمن مثلیات میں سے ہوں تو شفیع کو بھی کیا دینا پڑے گا؟ مثل. اور اگر سمن زوات القیم میں سے ہوں تو شفیع کو بھی کیا دینا پڑے گی؟ قیمت دینا پڑے گی. اب صورت یہ کہ ایک ذمی نے کوئی زمین خریدی کسی دوسرے ذمی سے, ذمی وہ کافر, وہ غیر مسلم جو دار الاسلام میں رہتے ہیں اور سال کا جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرتے ہیں, اسلامی حکومت ان کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے اور ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے, سال کا ٹیکس دینا پڑتا ہے بھائی. اور جزیہ یاد رکھیے بڑا ہی تھوڑا سا ہوتا ہے, بڑا معمولی ہوتا ہے, تو یہ نہیں کہ یہ کوئی ٹیکس بہت زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹیکس ہوتا ہے. ہاں اگر مالدار ہوگا تو پھر تھوڑا سا زیادہ ہوگا, لیکن اتنا ہوگا کہ ان کے لیے بالکل یوں سمجھیں نہ ہونے کے برابر ہے, اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے بھائی. پورے سال کے چند ایک درہم ہوتے ہیں بھائی. اب پورے سال کے چند درہم کہ اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پورا سال اسلامی حکومت لیتی ہے, تو بہت تھوڑے سے ٹیکس ہوتا ہے. اچھا صورت مسئلہ یہ کہ ذمی نے یعنی اس دارالاسلام میں رہنے والے غیر مسلم نے دوسرے ذمی سے ایک گھر یا زمین خریدی اور بدلے میں اس کو شراب دی یا بدلے میں اس کو خنزیر دیے. اب شراب ان کے نزدیک مثلیات میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ مثلیات, جن کا وہ چیزیں جن کا مثل مل جاتا ہے, جن کا مثل مل جائے. مثلا دیکھو گندم ہے, تو گندم ایک شخص نے گندم دے کر زمین خریدی ہے, تو آپ کو بازار سے ویسے ہی گندم مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی؟ مل جائے گی. تو اس لیے ان کو مثلیات کہتے ہیں کہ ان کا مثل مل جاتا ہے. ایک آدمی نے 1000 من لوہا دے کر زمین خریدی ہے, تو لوہا کس میں سے ہے؟ لوہا وزنی ہے, اور اس کا مثل بازار سے مل جاتا ہے. آپ بازار جائیں گے اسی قسم کا ویسا ہی لوہا آپ کو بازار سے مل جائے گا, تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مثلیات, کہ ان کا مثل مل جاتا ہے. تو یہ جو شراب ہے یہ غیر مسلموں کے لیے मिसलियात में से है, एक शराब जैसी दूसरी शराब भी बाजार से उनको मिल जाएगी भाई। और खिंजीर जो है ये उनके नजदीक ज़वातुल क़ियम है, जैसे मुसलमानों के लिए भेड़ बकरियां वगैरह किस में से हैं, ज़वातुल क़ियम में से, इसी तरह खिंजीर उनके लिए किस में से हैं, ज़वातुल क़ियम में से। तो अब एक ज़िम्मी ने कोई जायदाद खरीदी है और बदले में शराब दी है, अब दूसरा ज़िम्मी उस जमीन पर शुफा करता है तो उसको भी बदले में मिसल देना पड़ेगा। अब अगर वो शराब के बदले उसने जमीन खरीदी है तो ये भी बदले में वैसी ही शराब देकर जमीन ले लेगा। और अगर वो जमीन किस तरह फरोख्त हुई थी, खिंजीर के बदले में, तो खिंजीर किस में से हैं, ज़वातुल क़ियम में से हैं उनके नजदीक, तो दूसरा जिम्मी जो शुफा करता है वो उन खिंजीरों की कीमत लगाकर वो बदले में दे देगा भाई। तो कहते हैं वफी शिरा इ जिम्मी यिन, और जिम्मी के खरीदने की सूरत में बिखम्रिन, किसके बदले, शराब के बदले, औ खिंजीर इन या खिंजीर के बदले में, व शफीउ जिम्मीयुन, ये वो हालिया है इस हाल में कि शुफा करने वाला जिम्मी हो, शुफा करने वाला जिम्मी हो। तो कहते हैं बिमिसलिल खमरी, खमर के मिसल के बदले वो ले लेगा, वकीमतिल खिंजीरी, और खिंजीर की कीमत के बदले। दोबारा तर्जमा सुने, अब ये वशफी और जिम्मीयुन ये हाल बनेगा भाई इस हाल में कि शुफा करने वाला भी कौन है, जिम्मी है। कहते हैं वफी शिरा ए जिम्मीयिन, और जिम्मी के खरीदने की सूरत में भी खमरिन औ खिंजीरिन, उसने किसके बदले खरीदा है, खमर, उसने खमर या उसने शराब या खिंजीर के बदले खरीदा है, व शफी और जिम्मीयुन, इस हाल में कि शुफा करने वाला भी जिम्मी है तो वो उसको ले लेगा, बिमिसलिल खमरी वकीमतिल खिंजीरी, उस शराब के मिसल या खिंजीर की कीमत के बदले उस जमीन को ले लेगा। व शफीउल मुस्लिमु बिकीमति कुल्लिन, अब यही सूरत है, एक जिम्मी ने शराब या खिंजीर देकर एक जमीन को खरीदा है लेकिन जो शफा करने वाला है वो मुसलमान है, वो क्या है, मुसलमान है, मुसलमान है। मुसलमान जो है उसके लिए तो भाई अगर शफी जिम्मी था और जमीन किसके बदले बेची गई है, शराब के बदले, तो उसमें उसको भी शराब देना पड़ती थी जिम्मी को, और खिंजीर होता तो क्या देनी पड़ती थी, कीमत देना पड़ती थी, और मुसलमान दोनों सूरतों में कीमत देगा, उस शराब की कीमत लगाई जाएगी और मुसलमान शफिया क्या करेगा, उसको उस शराब की कीमत दे देगा, और खिंजीर की सूरत में भी उसकी कीमत दे देगा। खिंजीर की सूरत में तो मसला जाहिर है, जिम्मी भी बदले में खिंजीर नहीं देता था बल्कि क्या देता था, कीमत देता था, और शराब की सूरत में वो शराब देता था, लेकिन याद रखें मुसलमान के लिए शराब का, खमर का, न उसकी तमलीक जायज है न तमल्लुक जायज है, ये जाब्ता हमेशा याद रखना, मुसलमान के लिए शराब का न तमल्लुक जायज है, तमल्लुक का माना मालिक बनना, और न तमलीक जायज है दूसरे को मालिक बनाना, मुसलमान न खुद शराब का मालिक बन सकता है न दूसरे को बना सकता है, तो जब न तमल्लुक हो सकता है न तमलीक हो सकती है तो मुसलमान तो शराब दे ही नहीं सकता, अब वह खुद ही मालिक नहीं बन सकता तो कहां से लाएगा और फिर कैसे देगा भाई, मालिक बन ही नहीं सकता ये, और बैग के अंदर दूसरे को चीज का मालिक बनाना पड़ता है या नहीं पड़ता, मालिक बनाना पड़ता है, तो उसमें तमलीक होती है और तमलीक तो मुसलमान कर ही नहीं सकता, उसकी भी कोई सूरत नहीं है। एक हां अपने ही पास अंगूर का रस पड़ा था वो पड़े पड़े क्या बन गया, शराब बन गया, ये तो ठीक है मिल्कियत में है, लेकिन क्या मिल्क बदली है, नहीं, ये तो पहले भी इसका मालिक कौन था, मुसलमान था, लेकिन दूसरे से खरीदकर मालिक बन ही नहीं सकता भाई, तमल्लुक जायज ही नहीं है, और अगर इसके पास खुद मसलन अंगूर का रस था और पड़े पड़े क्या बन गया, शराब बन गई, تو وہ شراب دوسرے کو اب مالک نہیں بنا سکتا مسلمان بھائی, تملیک بھی جائز نہیں ہے. تو مسلمان کے لیے خمر دینے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو لہذا یہاں پر وہ خمر کے بدلے کیا دے دے گا, اس کی قیمت دے دے گا. اور خنزیر کے بدلے تو ذمی بھی قیمت دیتا تھا, تو مسلمان بھی کیا دے دے گا, قیمت دے دے گا. یہ معنی ہے والشفیع المسلم, اور وہ شفا کرنے والا جو مسلمان ہو وہ لے لے گا بقیمت کل اے کل واحد. یہاں پھر کل پر تنوین آ رہی ہے بھائی, اور کلو پر تنوین آئے تو یہ عوض ہے کس سے, مضافون الیہ سے. اے بقیمت کل واحد, وہ ہر ایک کی قیمت کے بدلے لے لے گا. وہ شفیع اگر مسلمان ہو تو وہ ہر ایک کی قیمت کے بدلے زمین کو لے لے, خمر کی بھی قیمت کے بدلے لے گا اور خنزیر کی بھی قیمت کے بدلے لے لے گا. وفی بنا المشتری وغرسہ بالثمن وقیمتہما مقلوعین کما فی الغصب او کلف المشتری قلعہما. صورت مسئلہ یہ کہ بائے نے زمین بیچی اور مشتری نے خریدنے کے بعد اس میں ایک عمارت تعمیر کر لی, آپ کو دو چار ماہ بعد, شفیع کو دو چار ماہ بعد پتا چلا کہ وہ زمین فروخت ہوئی ہے, جب تک مشتری اس میں ایک عمارت بنا چکا یا مشتری اس کے اندر ایک باغ لگا چکا ہے بھائی, پودے لگا دیے اور تو اس میں باغ لگا دیا اس نے, تو اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں شفیع شفا کرتا ہے تو وہ زمین کو اس باغ یا بلڈنگ سمیت لے لے. کیا کرے؟ باغ یا بلڈنگ سمیت لے گا, اور اس باغ اور بلڈنگ کی بھی قیمت اس کو ادا کرنا پڑے گی. لیکن یاد رکھنا, بلڈنگ کے پورے پیسے ادا نہیں کرے گا, باغ کے پورے پیسے ادا نہیں کرے گا, بلکہ اکھڑی ہوئی بلڈنگ یعنی اس کے ملبے کی قیمت دے گا. اسی طرح اکھڑے ہوئے باغ کی یعنی اس کے اکھاڑے ہوئے پودوں کی قیمت دے دے گا اور زمین کو لے لے گا. اور چاہے تو مشتری سے کہے کہ میں صرف زمین ہی لوں گا جیسے آپ نے زمین لی تھی. مثلا آپ نے 10 لاکھ کی زمین لی تھی اور آپ نے اس کے اوپر 5 لاکھ کی عمارت تعمیر کر دی ہے, کوئی کمرہ وغیرہ بنا دیا ہے, یا آپ نے اس پر 5 لاکھ کے پودے لگا دیے ہیں, مجھے یہ پودے نہیں چاہیے, مجھے یہ عمارت نہیں چاہیے, 10 لاکھ کی زمین آپ نے لی تھی, میں بھی 10 لاکھ کی زمین جو ہے آپ سے میں یہ زمین لے لیتا ہوں, آپ یوں کریں اپنی عمارت کو اکھاڑیں یہاں سے اور ملبے کو لے جائیں, پودوں کو نکالیں اکھاڑیں اور ان کو یہاں سے لے جائیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دو اختیار ہوں گے شفیع کو, یا تو کیا کرے, بلڈنگ اور پودوں سمیت زمین لے لے, یا مشتری کو کیا کہے کہ اپنے پودے اور بلڈنگ یہاں سے اکھاڑو اور لے جاؤ اور زمین میرے حوالے کر دو. پہلی صورت کیا ہے, شفیع کیا کرے گا, بلڈنگ اور پودوں سمیت لے گا, لیکن اس میں بھی میں نے بتلایا ہے کہ پوری بلڈنگ کے پیسے نہیں دے گا بلکہ ملبے کی قیمت لگائی جائے گی, اور پورے باغ کی پیسے نہیں دے گا بلکہ اکھڑے ہوئے باغ کی قیمت لگائی جائے گی. مثلا دیکھو بھائی, مشتری نے زمین خریدی 10 لاکھ کی اور اس پر جو بلڈنگ یا کمرہ اس نے بنایا وہ اس پر 5 لاکھ لگ گئے, تو اب کل پیسے کتنے بن گئے, 15 لاکھ. لیکن اگر اس کمرے کو گرایا جائے تو اس کا ملبہ یعنی اینٹیں وغیرہ اور اس کی لکڑی وغیرہ یا اور جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی وہ 1 لاکھ کی ہیں. وہ کتنے کی بنتی ہیں, 1 لاکھ کی. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے بھائی, کمرہ تیار ہے, اب اس کو گرانے پہ بھی کچھ خرچہ ہوگا یا نہیں, گرانے پہ بھی خرچہ ہوگا, مزدور بلانے پڑیں گے, وہ اس کو گرائیں گے. مثلا اس کے گرانے پر 20,000 خرچہ ہو جاتا ہے, تو وہ خرچہ بھی کم کر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ وہ خرچہ بھی کم کیا جائے گا. مثلا دیکھو, وہ زمین کتنے کی خریدی, 10 لاکھ, اور اس پر کمرہ جو بنایا وہ کتنے میں بنایا, 5 لاکھ. اس کا ملبہ جو ہے وہ 1,20,000 کا بنتا ہے. ملبہ کتنے کا بنتا ہے, एक लाख बीस हजार का बनता है, लेकिन बीस हजार उस पर खर्चा आता है उसके गिराने का, तो वो भी काटे जाएंगे भाई। तो मुश्तरी जो इस कमरे को लेगा वो दस लाख जमीन के दे देगा और एक लाख मलबे के देगा, वो जो गिराने के पैसे हैं वो भी काटेगा उसमें से, क्योंकि अगर वो मलबा खरीदता ही नहीं है और मुश्तरी को क्या कहता है कि सबने बिल्डिंग को उखाड़ा और ले जाओ, तो उसको भी वो मलबा कितने का मिलेगा, एक लाख का ही मिलेगा ना, जाहिर सी बात है, उसको भी गिराने के बीस हजार लगाने पड़ेंगे या नहीं। सूरत समझ में आ गई? तो लिहाजा यहां पर शफी को दो इख्तियार हैं, या तो उस उखड़ी हुई बिल्डिंग या उखड़े हुए बाग के पैसे देकर उनको ले ले और इसमें से भी क्या कर लेगा, उनके जो काटने या गिराने की मजदूरी है उसको मिन्हा कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और चाहे तो वो बिल्डिंग या बाग ना ले, सिर्फ जमीन ले ले और मुश्तरी से कहे कि अपनी बिल्डिंग उखाड़ो, अपना बाग उखाड़ो और यहां से ले जाओ। सूरत समझ में आ गई? अब देखिए किताब पर, वफी बिना इल मुश्तरी वगर सी ही बिस्ता मनी वकीमती ही मा मकलूनी। बिना भाई बना, यबनी बिना अन, इसके माने हैं तामीर करना, इमारत बनाना। तो बिना ये मसदर भी है, तामीर करना भी, और इसका माना इमारत के भी आते हैं। इमारत को भी अरबी में क्या कहते हैं, बिना उन। तो यहां पर ये मसदर है, वफी बिना इल मुश्तरी, मुश्तरी की इमारत बनाने की सूरत में, और आगे बिना का लफ्ज जो आएगा उसका माना इमारत के हम करेंगे। तो ये दोनों माना याद रखना, यहां पर बिना का क्या तर्जमा करेंगे, मसदरी माना तामीर करना, और आगे बिना का लफ्ज आएगा उसका माना क्या करेंगे, इमारत भाई जो तामीर कर ली गई। इसी तरह वगर सी ही, गरसा यगरिसु गरसन, इसका माना है दरख्त लगाना, पौधे लगाना, और इसी तरह वो जो पौधा लगाया गया है, वो दरख्त जो लगाया गया है उसको भी गर्स और गिर्स कहते हैं। तो गर्स का माना दरख्त या पौधा लगाना, यानी मस्तरी माना भी है, और वो पौधा या वो दरख्त जो लगाया गया है उसको भी गर्स और गिर्स दोनों लफ्ज बोलते हैं भाई, आयन पर फतहा भी और आयन पर कसरा भी। तो यहां पर गर्स का मस्तरी माना करेंगे, वह गर्स ही और मुश्तरी का दरख्त लगाना, मुश्तरी का पौधे लगाना। तवज्जो है, यहां भी बिना का लफ्ज आया, यहां कौन सा तर्जमा करेंगे, मस्तरी, और आगे क्या तर्जमा करेंगे, बिना का इमारत, और गर्स यहां गर्स का क्या तर्जमा करेंगे, पौधे लगाना, दरख्त लगाना, और आगे भी गर्स या गिर्स का लफ्ज आएगा तो उसका माना करेंगे वो दरख्त या वो पौधे करेंगे जो लगाए गए हैं। वफी बिना इल मुश्तरी व गर्स ही, और मुश्तरी की इमारत तामीर करने की सूरत में, व गर्स ही और उसके पौधे लगाने की सूरत में, वो जो शफिया है वो उसको ले लेगा, बिस समनी, किसके बदले, समन के बदले, वकीमती ही मां, और उन दोनों की कीमत के बदले, मकलूएन, इस हाल में कि वो उखाड़े गए हों, इस हाल में कि वो इबारत पे नजर है, क्या करेगा मुश्तरी, किसके बदले लेगा, समन, समन ये जमीन के जो समन थे कितने थे, दस लाख, वकीमती ही मां, और उन दोनों की जो कीमत है, मकलूएन, पूरे बिल्डिंग बनी हुई की कीमत, या मकलूएन भाई उखड़े हुए भाई, चाहे बाग है तो उसकी भी उखड़ी हुई की कीमत लगाई जाएगी, और इमारत है तो उसकी भी उखड़े, तो दो चीजें अब देगा वो, एक समन जमीन के देगा जो दस लाख थे, और वो जो एक लाख मलबे का या उखड़े हुए दरख्तों के पैसे हैं वो भी अदा करेगा। सूरत समझ में आ गई? तो कहते हैं वफी बिना इल मुश्तरी व गर्स ही बिसमनी वकीमती हिमा मकलूआनी कमाफिल गस्बी, और मुश्तरी की इमारत बनाने की सूरत में और दरख्त और पौधे लगाने की सूरत में वो शफी उसको ले लेगा, बिसमनी, समन के बदले में, वकीमती हिमा, और उन दोनों की कीमत, यानी समन भी देगा जमीन के और उन दोनों की कीमत भी साथ देगा, लेकिन मकलूआनी, इस हाल में कि वो उखाड़े गए हों, यानी उखड़े हुओं की कीमत दे देगा। कमा फिल गस्बी, जैसे कि गसब में है, जैसे किस में है, गसब की सूरत में है। गसब कहते हैं किसी की चीज पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, उसे छीन लेना, इसको गसब कहते हैं, کسی دوسرے کی چیز چھین لینا، قبضہ کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غصب کہتے ہیں. ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا، یا پتہ بھی چلا لیکن بیچارہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اور اس دوران اس نے اس پر عمارت بنا لی یا اس پر باغ لگا دیا. اب یہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی وہ زمین اس کو دلوا دے گا. بھائی وہ جو غاصب ہے جس نے غصب کی، اس نے اس پر بلڈنگ بنائی ہے، اس نے اس کے اوپر باغ لگایا ہے، کہتے ہیں بھائی جو مالک ہے اس کو اختیار ہوگا. یا تو غاصب کو کہے کہ میری اجازت کے بغیر تم نے یہ بلڈنگ اور پودے لگائے ہیں، ان کو اکھاڑو اور لے جاؤ یہاں سے، اور چاہے تو کیا کرے، ان کی اکھڑے ہوئے یعنی ملبے کی یا اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت اس غاصب کو دے دے، زمین بھی لے لے اور اس بلڈنگ یا ملبے یعنی ملبے کی قیمت اور اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے کر وہ عمارت بھی پوری کی پوری لے لے اس سے، یا وہ پورا باغ اس سے لے لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اوپر مشتری کی صورت میں وہ تیار بلڈنگ لے گا، یہ نہیں کہ مشتری اس کے لیے بلڈنگ گرا کے چلا جائے کہ تم نے ملبے کے پیسے دیے ہیں تو میں بھی تمہیں ملبہ دے کر جاؤں گا. وہ ملبہ بنائے گا تو شفیع کہے گا لے جاؤ اپنا ملبہ، مجھے میرے کس کام کا ہے یہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تیار بلڈنگ تیار باغ لے گا، لیکن بدلے میں کیا دے گا؟ اکھڑے ہوئے درختوں یا گری ہوئی عمارت کے پیسے دے گا، اس کے ملبے کے پیسے دے گا. کہتے ہیں کما فی الغصب، جیسے کہ غصب میں ہوتا ہے، او کلف المشتری، یا مکلف بنایا جائے گا مشتری کو قلعہما، ان دونوں کے اکھاڑنے کا. کلف یکلف تکلیف کا معنی دوسرے کو پابند بنانا، ذمہ دار بنانا. یا تو ایک صورت یہ تھی کہ شفیع کیا کرے، وہ تیار عمارت لے لے اور تیار درخت لے لے اور ملبے کے پیسے یا اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے بھی ساتھ دے دے. اور دوسری صورت کیا تھی؟ کہ یہ کہے نہیں جی میرے پاس تو 10 لاکھ ہیں، زیادہ ہیں ہی نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا اس سے زیادہ، اپنے بلڈنگ اکھاڑو اور یہاں سے لے جاؤ، اپنے درخت یہاں سے اکھاڑو اور لے جاؤ. یہ معنی ہے او کلف المشتری، یا مکلف بنایا جائے گا، پابند بنایا جائے گا مشتری کو قلعہما، ان دونوں کے اکھاڑنے کا. اے اخذ شفیع، اور یعنی لے لے گا شفیع، فی ما، اس صورت میں، اذا بن المشتری، جب مشتری نے کوئی عمارت تعمیر کی، او غارسا، یا اس نے کوئی درخت لگائے، بسمنی، تو شفیع لے لے گا کس کے بدلے؟ بسمنی، اس کے زمین کے سمن کے بدلے. وقیمتہما مقلوعینی، اور ان دونوں کی قیمت یعنی وہ عمارت یا درختوں کی قیمت کے بدلے مقلوعین، اس حال میں کہ وہ اکھاڑے گئے ہوں. او کلف المشتری، یا مکلف بنایا جائے گا، پابند کیا جائے گا مشتری کو قلع البناء والغرس، اس عمارت اور ان درختوں کے اکھاڑنے کا اس کو مکلف بنایا جائے گا. والمراد بقیمتہما مقلوعین، میں نے آپ کو بتلایا کہ اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت یا اکھڑی ہوئی بلڈنگ کی قیمت کا کیا معنی؟ کہ اس میں سے وہ ان کے گرانے پر جو خرچہ آئے اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ کم کیا جائے گا. وہی بیان کرنے لگے، کہتے ہیں والمراد بقیمتہما مقلوعین، کہتے ہیں ماتن کی مراد ان دونوں کی قیمت سے، اس حال میں کہ اکھاڑے گئے ہوں، اس سے ان کی مراد قیمتہما، ان دونوں کی قیمت ہے. مستحق قیل قطعی، اس حال میں کہ یہ دونوں مستحق قطع ہوں، اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں؟ مستحق قطع ہوں، گرانے کے مستحق ہوں. گرانے کے مستحق کا معنی حقدار ہیں، یعنی ان کو گرانے کے قابل ہیں، گرانے کے لائق ہیں. بھائی بلڈنگ کھڑی ہے، اس وقت کتنا خرچہ ہے اس پر؟ 5 لاکھ. لیکن یہ بلڈنگ جب گرانے کی حقدار ہو گئی، اب اس کا ملبہ کتنے کا؟ ملبہ تو 1,20,000 کا، لیکن خرچہ کتنا ہے؟ خرچہ بھی تو آئے گا نا، تو معلوم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ خرچہ بھی نکالیں گے. تیار بلڈنگ جب وہ گرانے کی مستحق ہو گئی، جب گرانے کی مستحق ہو گئی تو جب ملبہ ملے گا تو اس میں وہ گرانے کا خرچہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس میں وہ خرچہ بھی آئے گا بھائی، صرف ملبے کی قیمت نہیں، तैयार बिल्डिंग जब वो गिराए जाने के मुस्तहिक हो चुकी, जब गिराए जाने के मुस्तहिक हो गई तो अब तो इसमें खर्चा भी डालना पड़ेगा भाई, सूरत समझ में आ गई। कमा मर्रा फिल गस्बी, जैसे कि ये बात गुजर गई किताबुल गसब में। वान अबी यूसुफ रहिमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अन्नहु ला युकल्लफु बिल कलई। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि अपनी बिल्डिंग और दरख्त उखाड़ो और यहां से ले जाओ, इसमें तो उस बेचारे का नुकसान है, मुश्तरी का नुकसान है। वो फरमाते हैं कि शफीअ को इख्तियार दे देंगे कि अब तुम जमीन लेना चाहते हो, तुम्हें अब पता लगा है, अब तक तो बिल्डिंग बन चुकी है, अब तक तो वो दरख्त लग चुके हैं, अब अगर तुम वो जमीन लेना चाहते हो तो बिल्डिंग के पूरे पैसे अदा करो, दरख्तों के पूरे पैसे अदा करो। अब तुम्हें ये बिल्डिंग समेत ये जमीन अब 10 लाख में नहीं मिलेगी, कितने की मिलेगी? 15 लाख की। बाग समेत ये जमीन अब तुम कितने में लोगे? 15 लाख में। लेना चाहते हो तो ले लो, या बिल्कुल ही छोड़ दो, शुफा ही ना करो, जमीन उस मुश्तरी के पास ही रहने दो। अब लेना चाहते हो तो पूरे पैसे दो या छोड़ दो। सूरत समझ में आ गई। तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अन्नहु ला युकल्लफु बिल कलई, के मुश्तरी को मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा उखाड़ने का, बल युखय्यरु, बल्कि शफीअ को इख्तियार दिया जाएगा बैन, इस चीज के दरमियान कि अन याखुज़ बिस्समनि व क़ीमतिल बिनाई अविल गिरसी, कि वो ले ले उस जमीन को उसके समन के बदले, व क़ीमतिल बिनाई अविल गिरसी, और उस इमारत या लगाए हुए पौधों की कीमत के बदले में। वह बैन अयुतरा का, और इसके दरमियान के वो उसको क्या कर दे?
छोड़
दे, ये शफीक को इख्तियार दे देंगे। तो इसमें दोनों का लिहाज है, शफीक मुश्तरी का भी नुकसान नहीं और शफिया का भी नुकसान नहीं। लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले लो, सारी जमीन ले लो, लेकिन बिल्डिंग के भी साथ पैसे दो, दरख्तों के भी साथ पैसे दो, और अगर नहीं लेना चाहते तो फिर सारा कुछ छोड़ दो। वह हुआ कौल शाफिई रहिमहुल्ला, और यही कौल है इमाम शाफिई रहिमहुल्ला का। लिअन्न तकलीफ बिल क़लई मिन अहकाम उद्वान, इसलिए क्योंकि वो फरमाते हैं अत्तकलीफ बिल क़लई, उखाड़ने का पाबंद करना, इसलिए क्योंकि उखाड़ने का पाबंद करना मिन अहकाम उद्वान, उद्वान कहते हैं जुल्म और दुश्मनी को, ज्यादती को, कहते इसलिए क्योंकि ये जो उखाड़ने का पाबंद करना ये तो ज्यादती के अहकाम में से है, ये तो ज्यादती और दुश्मनी के अहकाम में से है। किस में से है? उद्वान का माना ज्यादती और दुश्मनी, ये ज्यादती और दुश्मनी के अहकाम में से है। और मुश्तरी जो है उसने जब यह इमारत बनाई या उसने ये बाग लगाया तो क्या उसने किसी के साथ ज्यादती की या उसने अपनी जमीन में ये चीजें लगाई थी? अपनी जमीन उसने खरीदने के बाद, तो उसने किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की। लेकिन अगर आप उसको उखाड़ने का हुक्म दे रहे हैं, ये तो ज्यादती के अहकाम में से, कोई ज्यादती करे फिर उसको ऐसा कहा जाता है जैसे गसब में होता है। यहां उसने तो कोई गसब नहीं किया, उसने तो जमीन खरीदी है और उसमें अपनी जमीन में उसने इमारत बनाई है या दरख्त लगाए। तो कहते हैं लिअन्न तकलीफ बिल क़लई मिन अहकाम उद्वान, इसलिए क्योंकि उखाड़ने का पाबंद बनाना ये ज्यादती और दुश्मनी के अहकाम में से है। वल मुश्तरी हिना मुहिक्कुन फिल बिनाई, मुहिक हक पर जो हो, और मुश्तरी जो है यहां पर वो हक पर है, फिल बिनाई इमारत के मामले में, तामीर के मामले में वो यहां हक पर है। कुल ना, हम कहते हैं, अहनाफ ने क्या मसाला बताया था कि वो उखड़ी हुई बिल्डिंग या उखड़े हुए बाग के पैसे देकर ले लेगा या मुश्तरी को मुकल्लफ बनाया जाएगा, पाबंद किया जाएगा कि अपनी चीज यहां से उखाड़ कर ले जाओ। तो अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं कि आपने उसको क्यों उखाड़ने का हुक्म दिया। कहते हैं कुल ना, हम कहते हैं बना फी मौज़ेइन, कि उसने तामीर की है एक ऐसी जगह में। मौज़े नकेरा है और ताल्लका फेल आया, और नकेरा के बाद फेल आए तो वो उसके लिए अमूमन सिफत बनता है। हम कहते हैं बना कि उस मुश्तरी ने तामीर की है, फी मौज़ेइन, एक ऐसी जगह में, ताल्लका बिही हक्कुन मुतअक्किदुन लिलगैर, कि जिसके साथ मुतअल्लिक हो गया है एक हक्कुन, एक ऐसा हक, मुतअक्किदुन, जो पक्का है, मजबूत है, लिलगैरी, गैर का, गैर का ऐसा हक उस जगह के साथ वाबस्ता हो गया है जो बड़ा पक्का है। شفیع کو شریعت نے کیا دیا ہے؟ اس زمین کو لینے کا حق دیا ہے، اور یہ حق بڑا پکا اور بڑا مضبوط ہے بھائی، اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ مشتری نے تعمیر کی ایک ایسی جگہ پر جس کے ساتھ غیر کا بڑا مضبوط حق متعلق ہو گیا ہے، من غیر تسلیت، بغیر تسلیت کے، سلط یسلط، تسلیت کا معنی ہے مسلط کرنا. بھائی دیکھیے، مشتری نے وہ زمین خریدی اور شفیع نے کیا کیا ہے؟ شفا. اور شفیع کا حق اس زمین کے ساتھ وہ مضبوط ہے یا کمزور حق ہے؟ مضبوط حق ہے، حتیٰ کہ وہ اس کو لے لیتا ہے بھائی مشتری سے. تو یہ ایک ایسی جگہ جس کے ساتھ کسی غیر کا بڑا ہی مضبوط حق وابستہ تھا، اس کے اندر مشتری نے تعمیر کر لی اور تعمیر بھی خود کی، جس کا حق وابستہ تھا اس نے کوئی اس کی اجازت نہیں دی، اس نے اس کو اس پر مسلط نہیں کیا، اس نے اس کو اس کے حوالے نہیں کیا تھا بھائی. لہذا جب غیر کا مضبوط حق وابستہ تھا اور اس نے اس کو مسلط نہیں کیا تھا، بنانے کی اجازت وغیرہ نہیں دی تھی، اس کے حوالے نہیں کیا تھا، تو لہذا مشتری کو کیا کہیں گے کہ اپنی بلڈنگ یا اپنے باغ کو اکھاڑو اور یہاں سے لے جاؤ. تو قلنا، ہم کہتے ہیں، بنا فی موضع تعلق به حق متأکد للغیر من غیر تسلیت، کے مشتری نے تعمیر کی ہے ایک ایسی جگہ میں جس کے ساتھ غیر کا، یہ یوں کہ کسی دوسرے کا بڑا مضبوط حق متعلق ہے، من غیر تسلیت، بغیر اس کی طرف سے مسلط کیے، بغیر اس کی طرف سے مسلط کیے، اس نے تعمیر خود کی ہے، اس نے اس کو اس پر مسلط نہیں کیا. ورجع الشفیع بالثمن فقط ان بنا او غرس ثم استحقت. بھئی یاد رکھیے، پہلے ایک بیع کا مسئلہ سمجھ لو، شفے کا مسئلہ نہیں، ویسے بیع کا. ایک آدمی دوسرے کو کوئی زمین بیچتا ہے اور مشتری خریدنے کے بعد اس گھر پر عمارت تعمیر کر لیتا ہے، اس زمین پر عمارت تعمیر کر لیتا ہے یا کوئی باغ لگا لیتا ہے، بعد میں اس زمین کا کوئی اور مستحق نکل آیا، اس نے آ کر قاضی کے پاس دعویٰ کر دیا کہ قاضی صاحب یہ تو میری زمین تھی، اس شخص نے ویسے ہی اپنی بنا کر بیچ دی. قاضی جو ہے مشتری سے وہ زمین واپس اس مستحق کو دلوا دے گا. اب مشتری بیچارے کو کا تو نقصان ہو گیا، اس کے تو ایک تو پیسے ڈوبے، پھر اس نے کیا کیا تھا، اس پر عمارت بنائی تھی یا باغ لگایا تھا. تو بھئی سمن وہ عہدہ تو کس پر آئے گا؟ کل لفظ گزرا تھا عہدہ تو البیع، بائے پر. جس کو سمن ادا کیے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ سمن کس سے وصول کیے جائیں گے؟ بائے سے وصول کیے جائیں گے. اب یہ جو عمارت ہے اور درخت لگائے، ان کا کیا کریں بھئی؟ اس نے تو بائے کو 10 لاکھ دیے تھے، لیکن یہ بلڈنگ اور باغ پر اس کے 5 لاکھ لگے ہیں. کہتے ہیں وہ پیسے بھی بائے سے اس کو دلائے جائیں گے، وہ پیسے بھی، پوری بلڈنگ کے 5 لاکھ یا پورے باغ کے جو 5 لاکھ ہیں، وہ بھی کس سے دلائے جائیں گے؟ بائے سے. کیوں؟ کیونکہ دھوکہ بائے کی طرف سے ہوا ہے، بائے نے مسلط کیا اس کو اس زمین پر، اس نے یہ زمین اس کے حوالے کی تھی. اب یہی مسئلہ بنا لو شفا میں. شفیع نے زمین لے لی مشتری سے، اب شفیع نے اس کے اوپر ایک عمارت بنا لی یا باغ لگا لیا. توجہ ہے، بائے نے زمین کس کو بیچی تھی؟ مشتری کو. مشتری سے شفا کر کے کس نے لے لی؟ شفیع نے. اب شفیع نے اس پر کیا بنا لیا، عمارت یا باغ؟ اب اس زمین کا کوئی مستحق نکل آیا اور اس نے کہا قاضی صاحب یہ زمین تو میری ہے، انہوں نے آپس میں فروخت کیا اور اس نے شفا، اس کو پتا نہیں تھا، اس نے شفا کر دیا. تو قاضی جو مستحق ہے اس کی بینہ سن کر اس کو زمین دلا دے گا. اب شفیع کا نقصان ہو رہا ہے، اس نے زمین کے بھی پیسے دیے تھے اور عمارت. بھائی زمین کے پیسے تو ٹھیک ہے، جس سے زمین لی تھی اس سے پیسے واپس دلائے جائیں گے. اگر اس نے کس سے لی تھی زمین؟ مشتری سے. سمن کس کو دیے تھے؟ مشتری کو. تو مشتری سے پیسے اس کو واپس دلا دیں گے، اور مشتری کس سے واپس لے لے گا؟ بائے سے لے لے گا. اور اگر شفیع نے کس سے پیسے، کس کو پیسے دیے تھے؟ بائے کو دیے تھے، تو بائے سے پیسے اس کو واپس دلا دیں گے. اور وہ جو اس نے اوپر عمارت تعمیر کی और बाग लगाया था, उसके पैसे उसके बारे में किस पर रुजू करेगा? कहते हैं उसके लिए वो किसी पर भी रुजू नहीं कर सकता, किसी पर भी रुजू नहीं कर सकता। मलबा तो इसका अपना है, मलबा तो ले जाए, बात तो मलबे की नहीं हो रही ना। मलबा तो लाख रुपए का होगा, बिल्डिंग पे तो इसके कितने लगे हैं, 5 लाख, या बाग पे भी 5 लाख लगे हैं। तो कहते हैं भाई वो जो नुकसान हुआ उसमें वो किसी पर रुजू नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? ये जमीन हमने बाय से ली थी या मुश्तरी से ली थी? कहते हैं भाई ये शुफे की बात चल रही है, और शुफे में कोई उनकी रजामंदी से जमीन ली थी या जबरन ली थी?
जबरन,
तो जबरन ली थी, इसने खुद जबरदस्ती करके जमीन ली थी। लिहाजा अब इस सूरत में अगर कोई, तो उन्होंने तो कोई इसको धोखा नहीं दिया, इसने जबरन ली थी जमीन, तो लिहाजा अब इस नुकसान की सूरत में किसी पर भी रुजू नहीं कर सकता। मसला समझ में आ गया? देखिए किताब पर, वरजा शफीउ बिस्समनि फकत, और शफी जो है वो रुजू करेगा समन के साथ, फकत सिर्फ समन के साथ रुजू करेगा, सिर्फ समन उनसे वापस लेगा। कब? इन बना और गरासा सुमस्तुहिकत, अगर इसने उसमें इमारत तामीर की या दरख्त लगाए, सुमस्तुहिकत, फिर वो जमीन किसी की निकल आई, वो घर किसी का निकल आया, तो किसके साथ रुजू करेगा? बिस्समनि फकत, किसके साथ? सिर्फ समन के साथ, सिर्फ समन वापस लेगा और इमारत और दरख्तों के पैसे वापस नहीं लेगा। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं आई इन अखदा शफीउ बिशुफाती, अगर शफी ने जमीन को ले लिया बिशुफाती शुफे के साथ, वह बना आओ गारासा, और उसमें उसने इमारत बना ली या दरख्त लगा दिए, सुम मस्तुहिक कतिल अर्जू, फिर वो जमीन का कोई मुस्तहिक निकल आया, रजा बिस्तमानी फकत, तो शफिया जो है वो समन के साथ रुजू करेगा सिर्फ, वला यरजिउ बिकीमतिल बिनाई अविल गिरसी अला अहदिन, और वो रुजू नहीं करेगा इमारत की कीमत के साथ या उन लगाए हुए पौधों की कीमत के साथ, अला अहदिन, किसी एक पर भी, किसी एक पर भी वो रुजू नहीं कर सकता, चाहे उसने बाय से ली हो चाहे मुश्तरी से ली हो, क्योंकि इसने जबरन जमीन ली है। बेखिलाफ इल मुश्तरी, बखिलाफ किसके? मुश्तरी के। वही मसला जो मैंने पहले जिक्र किया कि बाय ने जमीन बेची और मुश्तरी ने उस पर क्या किया, घर बनाया या दरख्त लगाया। शुफा का मसला नहीं है, शुफे को जरा निकाल दो, फिर उस मुश्तरी ने बना लिया घर वगैरह उस पर, और फिर यह जमीन किसी की निकल आई, तो मुश्तरी बाय से समन भी लेगा और इस इमारत या बाग के नुकसान पैसे भी पूरे लेगा। वही जिक्र कर रहे हैं, बेखिलाफ इल मुश्तरी, बखिलाफ किसके? मुश्तरी के। फइन्नहु यरजिउ बिकीमतिल बिनाई अविल गिरसी अलल बाई, वो रुजू करेगा उस इमारत की कीमत के साथ या और दरख्तों की, लगाए हुए दरख्तों की कीमत के साथ, अलल बाई, किस पर? बाय पर करेगा। क्यों? लिअन्नहु मुसल्लतुम मिन जिहतिही, इसलिए क्योंकि वो जो मुश्तरी है वो मुसल्लत है, मिन जिहतिही, किसकी जानिब से? बाय की जानिब से, बाय ने इसको उस जमीन पर मुसल्लत किया है, बाय ने वो जमीन इसको दी थी। बिखिलाफी शफीअ, बखिलाफ किसके? शफिया के। वो नहीं रुजू कर सकता, फइन्नहु अखदा जबरन, उसने इसको जबरन लिया है, जबरदस्ती लिया है। वबिकुल्ली समनी इन खरीबत औ जफ्फा शजर, सूरत मसला ये, भाई देखो एक शख्स दूसरे से जमीन लेता है और उसके अंदर पहले से ही एक इमारत मौजूद है, पहले से ही उसमें बाग लगा हुआ है, या यूं कहें दरख्त लगे हुए हैं, बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, फिर मुश्तरी खरीदने के बाद इस इमारत को गिरा देता है या इन दरख्तों को गिरा देता है, एक सूरत। दूसरी सूरत यह कि मुश्तरी ने खरीदी और उसने इस बिल्डिंग को या दरख्तों को नहीं गिराया, कोई आसमानी आफत आई, जलजला आया, वो बिल्डिंग गिर गई या आग लग गई और वो दरख्त सारे जल गए, दूसरी सूरत। अब शफीअ ये जमीन लेना चाहता है तो क्या उस बिल्डिंग के और दरख्तों के पैसे अब कम किए जाएंगे? एक सूरत क्या थी, किसने उखाड़ा यह सारा कुछ? मुश्तरी ने। दूसरी सूरत की ये सारी चीजें किससे खराब हुई? आसमानी आफत से। फुकहा फरमाते हैं कि जब ये चीजें आसमानी आफत से खराब हुई तो इस सूरत में पैसों में कोई कमी नहीं होगी। मुश्तरी ने यह जमीन 10 लाख की खरीदी थी कमरे समेत, अब कमरा गिर चुका है लेकिन फिर भी शफी को कितने देने पड़ेंगे? 10 लाख। और मुश्तरी ने यह बाग खरीदा था दरख्तों समेत 10 लाख का, अब वो दरख्त जल चुके हैं लेकिन शफी अगर लेना चाहता है तो कितने देने पड़ेंगे? 10 लाख पूरे देना पड़ेंगे। भाई क्यों, कीमत में कमी क्यों नहीं हुई? कहते हैं भाई देखिए, शुफा जो होता है असल में जमीन में होता है, और असल यहां पर हम यूं समझेंगे कि यह बैग जमीन के अंदर हुई थी, और चूंकि जमीन पर कमरा बना हुआ तो कमरा भी तबअन बैग के अंदर दाखिल हो जाता है। याद रखो, वो चीजें जो जमीन पर मुस्तकिल लगी रहती हैं, जमीन बेचो तो वो चीजें भी बैग के अंदर दाखिल हो जाती हैं तबअन उस जमीन के ताबे होकर। तवज्जो है, कुछ चीजें जमीन पर लगे रहने के लिए होती हैं और कुछ चीजें जमीन से अलहदा करने के लिए होती हैं। तो जो चीजें लगी रहने वाली हैं मुस्तकिल, जब आप जमीन बेचेंगे तो उसकी बैअ में वो चीजें भी तबान दाखिल हो जाएंगी। आप एक जमीन बेचते हैं, उस जमीन में 3-4 कमरे बने हुए हैं तो वो भी बैअ के अंदर तबान दाखिल हो जाएंगे। आप बेच जमीन रहे लेकिन ये कमरे भी साथ ही चले जाएंगे। देखिए, जमीन पर कमरे बने हुए हैं तो ये कमरे जमीन पर लगे ही रहते हैं मुस्तकिल, या इनको उतारा जाता है? ये तो लगे रहते हैं, ये तो जुड़े रहते हैं साथ, लिहाजा जब बेचेंगे तो ये भी साथ ही फरोख्त होंगे, उस तबान उस बैग के अंदर दाखिल होंगे। इसी तरह बाग के दरख्त हैं, क्या इन दरख्तों को उतारा जाता है या ये इसी तरह मुस्तकिल लगे रहते हैं जमीन पर? ये मुस्तकिल लगे रहते हैं, तो जब आप ये जमीन बेचेंगे तो ये दरख्त भी तबान बैग के अंदर दाखिल हो जाएंगे, आप जिक्र करें या ना करें। बात समझ में आ गई। और कुछ चीजें वो हैं जो अलहदा करने के लिए होती हैं, जैसे फसल है, फसल काश्त की जाती है वो लगी रहती है या पक जाए तो उतार ली जाती है? उतार ली जाती है। तो अब आप जमीन बेचते हैं और उस पर फसल लगी हुई है तो फसल बैग के अंदर नहीं दाखिल होगी। बात समझ में आ गई। फसल का अलग जिक्र करना पड़ेगा फिर दाखिल हो सकती है, अगर जिक्र ना किया तो बैअ में दाखिल नहीं। मसला समझ में आ गया। तो चीजें कितनी किस्म की हो गई? दो। कुछ चीजें जमीन के साथ जुड़ी रहती हैं और कुछ चीजों को अलहदा किया जाता है, तो जिनको अलहदा किया जाता है वो बैअ में दाखिल नहीं होंगी, इल्ला ये कि उनको अभी आप अलहदा जिक्र कर दें साथ कि ये भी बैअ में दाखिल हैं। और जो चीजें जमीन के साथ जुड़ी रहती हैं और इसीलिए होती हैं, तो जब आप बैअ करेंगे तो आप उनको जिक्र ना भी करें, वो तबअन बैअ के अंदर दाखिल हो जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सूरत यह कि मुश्तरी ने वो जमीन खरीदी और उसके अंदर इमारत थी या बाग था, और वो बाग फिर एक सूरत यह कि मुश्तरी ने क्या किया, उस इमारत को उखाड़ लिया, गिरा दिया, या दरख्तों को गिरा दिया। और दूसरी सूरत क्या कि वो बाग या दरख्त आसमानी आफत से बर्बाद हो गए। तो फुकहा फरमाते हैं कि वो सूरत जब वो बाग आसमानी आफत से बर्बाद हुआ तो जमीन के समन में कोई कमी नहीं की जाएगी। जमीन 10 लाख की ली थी इमारत समेत, इमारत अब गिर चुकी है लेकिन शफी को अब भी कितने में लेना पड़ेगी? 10 लाख में। वो बाग समेत उसने वो जमीन 10 लाख में लिया था, अब वो बाग सारा जल चुका है लेकिन शफी को कितने में लेना पड़ेगा? 10 लाख में। हम कहेंगे कि गोया इस मुश्तरी ने जमीन 10 लाख की खरीदी थी, ये बिल्डिंग तो वैसे ही तबान आ गई थी बीच में। सूरत समझ में आ रही? मुश्तरी ने जमीन कितने की खरीदी थी? 10 लाख की, और बिल्डिंग तो वैसे बीच में आ गई थी, या बाग तो वैसे बीच में आ गया था। अब अगर वो नहीं भी है तो कोई हर्ज नहीं, जमीन कितने की थी? 10 लाख की थी, तो ये भी 10 लाख में ले। लेकिन अगर मुश्तरी ने खुद उस बिल्डिंग को फिर गिराया या खुद उस बाग को गिराया, फिर कीमत में कमी कर दी जाएगी। जब मुश्तरी ने खुद गिराया है, इसका मतलब है खरीदते वक्त यह बिल्डिंग भी मकसूद थी और यह जमीन भी मकसूद थी, यह जमीन भी मकसूद थी और यह ऊपर लगे हुए दरख्त भी मकसूद। जब यह मकसूद बन गए तो अब इनके मुकाबले में कीमत आएगी। जब तक गैर मकसूद थे इनके मुकाबले में कोई कीमत नहीं, और जब मकसूद बन गए तो अब मालूम हुआ कि کہ بلڈنگ علیحدہ مقصود تھی، زمین علیحدہ مقصود تھی، اور شفا تو زمین میں ہوتا ہے، بلڈنگ میں نہیں ہوتا، تو بلڈنگ کے پیسے کم کر دیں گے، اور شفا تو زمین میں ہوتا ہے، درختوں کے اندر تو نہیں ہوتا، تو درختوں کے پیسے کم کر دیں گے. یہ وہ صورت ہے جب مشتری نے خود وہ بلڈنگ گرائی اور خود ان درختوں کو اکھاڑا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور ہاں، جب اس نے بلڈنگ اکھاڑ لی، گرا دی، تو شفیع جو ہے وہ صرف زمین لے گا، وہ ملبہ نہیں لے سکتا، یا وہ اکھڑے ہوئے درخت نہیں لے سکتا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ شفیع صرف کیا لے گا؟
زمین
لے گا، اکھڑا ہوا ملبہ نہیں لے سکتا یا وہ درخت. مانا یہ ہے جبرن نہیں لے سکتا، شفے کے اندر نہیں لے سکتا، شفے کے اندر نہیں لے سکتا. اتنی سمن میں ہم کمی کر دیں گے، لیکن وہ کہے نہیں جی ملبہ بھی میں نے لینا ہے. نہیں بھائی، ملبہ علیحدہ ہو گیا، شفا زمین میں ہوا کرتا ہے، جو علیحدہ ہو چیز اس میں نہیں ہوتا. شفا زمین میں ہوتا ہے، جو درخت وغیرہ زمین سے علیحدہ ہو جائیں ان میں شفا نہیں ہوتا، لہذا آپ ان کو نہیں لے سکتے. یہ ہے جبرن، جبرن نہیں لے سکتا، اسی شفے کے اندر نہیں لے سکتا. ویسے آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یہ بھی اتنے میں مجھے دے دو، تو وہ الگ بات ہے، وہ لینا چاہے تو لے سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جبرن نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اب الگ ہو چکا، اب وہ شفے کے اندر آتا ہی نہیں ہے. شفے میں تو زمین اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں آتی ہیں، علیحدہ چیزیں نہیں آتی. وبکل سمن، اور پورے سمن کے بدلے لے لے گا. ان خریبت، اگر وہ گھر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. عبارت پہ نظر ہے؟ او جف الشجر، یا وہ درخت سوکھ گیا، وہ درخت سوکھ گئے. اشترا دارن، یعنی خریدا مشتری نے کوئی گھر. فخریبت، تو وہ گھر برباد ہوا، تباہ ہو گیا. او بستان، یا اس نے مشتری نے کوئی باغ خریدا. فجف فشجر، تو درخت سوکھ گئے. فشفیع ان ارادہ، دیکھو گھر خراب ہوا یا باغ سوکھ گیا، مشتری کا کوئی دخل ہے اس میں؟ نہیں. آفت سما بھی ہے، لہذا پورے سمن کے بدلے لے گا. ہم یوں سمجھیں گے یہ چیزیں بے میں تبان آئی تھیں، اور سارے پیسے اصل تو زمین کے بدلے تھے، یہ تو ویسے بیچ میں آئی تھی، خراب بھی ہو گئی ہیں، کوئی حرج نہیں. فشفیع ان اراد ان یاخذ، پس شفیع اگر یہ ارادہ کرے کہ وہ ان کو لے لے، بشفعتی شفا کے ساتھ، تو یاخذ بجمیع السمن، تو اس کو لے لے گا پورے سمن کے بدلے. واخذ العرصۃ لن نقض بحصتها، اور لے لے گا العرص، عرصہ کہتے ہیں کھلا میدان. بھئی عمارت تو گر گئی نا، تو باقی کیا رہ گیا؟ کھلا میدان. اور اخذ العرصۃ، اور وہ کھلا میدان یا کھلی جگہ جو ہے وہ لے لے گا. لن نقض، نقض کہتے ہیں وہ ملبے کو، ملبے کو، ملبہ نہیں لے گا، صرف کیا لے گا؟ وہ کھلا میدان لے گا. یہ دوسرا مسئلہ آ رہا ہے. پہلے میں تو کیا تھا؟ پہلے میں تو عمارت گر گئی، درخت سوکھ گئے، وہ کھلا میدان ہی لے رہا ہے، لیکن پورے پیسے دینے پڑیں گے. اب دوسری صورت ذکر ہو رہی ہے، جب مشتری نے خود ان چیزوں کو گرایا ہو، تو پھر تو یہ مقصود بن گئی، جب مقصود ہوئی تو پھر ان کے پیسے کم ہوں گے. اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں وَأَخَذَ الْعَرْصَةَ، اور اس کھلے میدان کو لے لے گا. لَن نِقْضَى، ملبے کو نہیں. ملبہ کیوں نہیں لے سکتا؟ لے کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ وہ جدا ہو گیا، اس میں تو شفا نہیں ہو سکتا، جدا چیز میں تو شفا نہیں. تو وہ کھلا میدان لے لے گا، لن نقضا، ملبہ نہیں. اور وہ کھلا میدان لے گا بحصتها، اس کے حصے کے بقدر جو سمن ہو اس کے بدلے میں. یہ کب ہے؟ ان ہدم المشتری البناء، اگر مشتری نے گرایا ہو عمارت کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ان نما خود بالحصتی، کہ مشتری جو ہے وہ اس کے حصے کے بقدر کے بدلے میں لے لے گا. لأن المشتری قصد الاتلاف، اس لیے کیونکہ مشتری نے اس کو تباہ کرنے کا، تلف کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ چیز کیا بن گئی؟ مقصودی بن گئی. وفی الاولی، اور پہلی صورت میں، تلف بآفت سماویت، وہ ہلاک ہوئی ہے، وہ ختم ہوئی ہے آسمانی آفت کی وجہ سے. ولا یاخذ النقض، اور ملبہ نہیں لے سکتا. لانه ليس عقارا، اس لیے کیونکہ وہ عقار نہیں ہے، وہ غیر منقولی چیز. وہ غیر منقولی جائیداد نہیں ہے. ولم یبق طبعا, اب وہ زمین کے تابع بھی نہ رہا, اور وہ زمین کے تابع بھی نہ رہا کیونکہ زمین سے تو وہ جدا ہو چکا ہے, ملبہ بن چکا ہے, تو وہ بھی نہیں لے سکتا. میں نے بتایا جبرن نہیں لے سکتا, ہاں باہمی رضامندی سے اس کی بھی بیع کر لیتے ہیں تو پھر لے سکتا ہے. سورج سمجھ میں آگے؟ آسمانی آفت سے اگر وہ بلڈنگ گری یا باغ سوکھا اس میں کمی ہوگی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر مشتری نے وہ بلڈنگ گرائی ہے یا باغ گرایا ہے تو پھر قیمت میں کمی ہوگی. معلوم ہوا یہ بھی مقصود بن گئی, یہ بھی اس کا مقصود ہے, تو اس کو علیحدہ پیسے اس کے کم ہو جائیں گے. صورت مسئلہ یہ کہ بائے نے باغ بیچا مشتری کے ہاتھ اور اس باغ کے درختوں پر پھل بھی لگا ہوا تھا, یا باغ بیچا پھل تو نہیں تھا لیکن مشتری کے پاس جا کر ان درختوں پر پھل لگ گیا. اب شفیع شفا کرتا ہے, شفیع درختوں پر پھل لگا ہوا ہے, یا تو وہ بائے کے پاس سے ہی آیا ہے یا مشتری کے پاس وہ پھل اس پر لگے ہیں, تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں وہ شفیع جو ہے پھل سمیت باغ لے لے گا, وہی سمن ادا کر کے, وہی سمن ادا کر کے پھلوں سمیت وہ باغ لے لے گا. اور اگر مشتری نے وہ پھل اتار لیے تو پھر کیا سمن میں کمی کی جائے گی یا کمی نہیں کی جائے گی؟ کہتے ہیں اگر وہ پھل آئے تھے بائے کی طرف سے اور پھر مشتری نے اتارے ہیں, معلوم ہوا یہ پھل مقصود تھے, پھل کیا تھے؟
مقصود
تھے, لہذا ان کی پھر سمن میں کمی کر دی جائے گی. اور اگر یہ پھل بائے کی طرف سے نہیں آئے, مشتری ہی کے پاس پھل پیدا ہوئے اور اس نے پھل اتار لیے, تو پھر تو کوئی کمی نہیں ہوگی بھائی, کیونکہ یہ پھل تو پہلے بھی بیع کے اندر داخل نہیں تھے, اب بھی بیع میں داخل نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوہراؤ, کیا صورت؟ کہ بائے نے باغ بیچا اور اس پر پھل لگے ہوئے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھنا باغ میں پھل لگے ہوئے ہیں اور وہ پھر بیچ رہا ہے, حالانکہ پھل درختوں پر لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں یا اتارنے کے لیے ہوتے ہیں؟ اتارنے. اور جو چیز اتارنے کے لیے ہو وہ بیع میں طبعاً داخل ہوتی ہے؟
نہیں,
اس کو علیحدہ ذکر کرنا پڑتا ہے. معلوم ہوا انہوں نے بیع میں اس کو علیحدہ ذکر کیا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, ورنہ پھل داخل نہیں ہوتے, فصل بھی داخل نہیں ہوتی. تو اب بائے کے پاس سے پھل آ گئے یا مشتری کے پاس ہی ان پر پھل لگ گئے, اب شفیع شفا کرتا ہے, تو کہتے ہیں پھر بائے کی طرف سے پھل آئے تو بھی بات ظاہر ہے, پھل بے میں داخل تھے تو یہ بھی وہ پیسے اس نے بھی 10 لاکھ میں دیے تھے, اور زمین پھل سمیت لی تھی تو یہ بھی زمین پھل سمیت لے لے گا, اور مشتری کے پاس بھی پیدا ہو گئے ہوں تو بھی ہم ان کو کیا شمار کریں گے؟ تابعی شمار کریں گے, اور وہی 10 لاکھ میں پھل سمیت درختوں کو لے لے گا, چاہے بائے کی طرف سے پھل آئے ہوں چاہے یہاں پر پھل پیدا ہوئے ہوں. اور اگر مشتری کیا کرتا ہے, ان پھلوں کو اتارتا ہے, تو اگر بائے کی طرف سے آئے تھے پھر اس نے پھل اتارے, معلوم ہوا یہ پھل مقصود تھے, سمن میں کیا کر دی جائے گی؟ کمی کر دی جائے گی. اور اگر یہ پھل مشتری ہی کے پاس پیدا ہوئے اور پھر اس نے اتار بھی لیے, پھر تو بھئی یہ پھل بے میں داخل, شروع سے داخل ہی نہیں ہے, ان کے علاوہ ہی زمین کی قیمت 10 لاکھ تھی, اب اس نے اتار بھی لیے پھل تو بھی زمین تو اسی طرح ہے, تو اب بھی اس کی قیمت کتنی ہے؟ 10 لاکھ ہی ہے, تو وہ پورے میں لے لے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کتاب پر, وفی شراء ارض مع ثمر نخیل فیہا, اور زمین کو خریدنے کی صورت میں مع ثمر نخیل فیہا اس میں کھجور کے پھل کے ساتھ. نخیل کہتے ہیں کھجور کا درخت, ویسے کھجور کو ذکر کر دیا, کوئی بھی پھل ہو سب کا یہی حکم ہے. اور وفی شراء ارض مع ثمر نخیل فیہا, اور زمین کو کھجور کے پھل سمیت خریدنے کی صورت میں, یہ یوں کہیں وفی شراء ارض, اور زمین کو خریدنے کی صورت میں مع ثمر نخیل فیہا, ساتھ اس میں کھجور کے پھلوں کے, اولا ثمر علیہا, یا یہ صورت کہ کوئی پھل اس پر زمین کو خریدنے کی صورت میں کہ لا ثمر علیہا, ان پر کوئی پھل نہیں ہے, فاسمارا, तो फिर वो दरख्त फल ले आए, माहू आई माल मुश्तरी, किसके पास? मुश्तरी के पास। अब शफी लेना चाहता है, चाहे फल पहले से आए चाहे फल बाद में हुए, तो अखदहा बिसमरिहा, तो वो ले लेगा उस जमीन को फलों के साथ ही। वह बिहिस्सतिहा, यह अब अलग सूरत आ गई, वह बिहिस्सतिहा और फलों के और उस जमीन के हिस्से के बकदर मीना समन, किस में से? समन में से, यानी कमी होगी। कब? इन जज्जहुल मुश्तरी फिल अव्वल, अगर उन जज्जा या जुजू का माना है दरख्त को फल से उतारना, इन जज्जहुल मुश्तरी, अगर इन फलों को दरख्तों से उतार लिया मुश्तरी ने, फिल अव्वल पहली सूरत में, जब फल कहां से आए थे? बाय के पास से, तो इस सूरत में ले लेगा। दोबारा देखें, वह बिहिस्सतिहा मीन समन, वो जमीन का जो हिस्सा है समन में से, उसके बदले ले लेगा जमीन को, यानी कमी हो जाएगी, कीमत में कमी हो, फलों के निकाल देंगे। वह बिल्कुल लिफिसानी, और कुल समन के बदले ले लेगा, फिसानी दूसरी सूरत में, कौन सी सूरत?
मुश्तरी,
जब मुश्तरी के पास वो फल हुए और उसने उतार लिए। देखिए खुद बयान कर रहे हैं, इश्तरा अर्जन, मुश्तरी ने एक जमीन खरीदी, वदा करा था मारा नखीली फिल बै, और उसने जिक्र कर दिए खजूर के फल भी बै में, खजूर के फल भी बै में, क्यों जिक्र किए? कहते हैं इस ला यदखुलू बिदून इस जिक्री, क्योंकि फल बगैर जिक्र के बै में दाखिल नहीं होते, क्योंकि वो उतारने के लिए होते हैं। औ शरा, या इसने जमीन खरीदी, वलम यकुन अला शजरि समरुन, और दरख्तों पर फल नहीं थे, फअस्मरा फी यदिल मुश्तरी, फिर वो फल ले आए मुश्तरी के कब्जे में। तो अब फल लगे हुए या बाय की तरफ से आए हैं या मुश्तरी के पास पैदा हुए हैं। फशफी उया खुजुल अर्जा मात सामारी फिल फसलैन, तो शफी ले लेगा जमीन को फल समेत ही दोनों सूरतों में, दोनों फसलों में, चाहे फल बाय की तरफ से आए हों चाहे फल यहां मुश्तरी के पास लगे दरख्त पर आए हों। वह इन जद राहुल मुश्तरी, और अगर इन फलों को उतार लिया दरख्तों से मुश्तरी ने, इन फलों को काट लिया मुश्तरी ने, फशफी या खुजुल अर्जा, तो शफी जमीन को ले लेगा, बिदून इसा मरिन नखीली, बगैर खजूर के फलों के, लाकिन फी फसल अव्वली, लेकिन पहली सूरत में, या खुदु बिहिस्सतिल अर्ज मिन समनी, ले लेगा समन में से जो जमीन का हिस्सा है उसके बदले में, यानी फलों की कमी कर देंगे और सिर्फ जमीन की कीमत जो बनेगी वो हिस्सा बनेगा। या खुजू बिहिस्सतिल अर्ज मिन समनी, ले लेगा जमीन का जो हिस्सा है समन में से उसके बदले में। वफिल फसल सानी, और दूसरी सूरत में, जब फल किसके पास आए थे? मुश्तरी के पास, और फिर उसने उतार लिए थे, तो उस दूसरी सूरत में, या खुदु बिकुल समनी, जमीन को ले लेगा कुल समन के बदले में। लिअन्न समरा लम यकुन मौजूदन वक्त अल अक्दी, इसलिए क्योंकि वो फल तो अक्द के वक्त मौजूद नहीं थे। फला युकाबिलुहु शैउम मिन समनी, लिहाजा समन में से भी उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं होगी, समन में कोई कमी नहीं आएगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरह? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।